लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर, अमानवीय जीवन परिस्थितियों में हाशिए पर जीवन यापन करने वालों के लिए हम आपसे याचना करते हैं, ताकि सरकारी, गैर सरकारी और कलीसियाई संस्थाओं द्वारा उनकी अनदेखी न की जाए और न ही उन्हें कम महत्व का समझा जाए। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली में बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोफेसर बेंजामिन बड़ा के साथ हुई भेंटवार्ता के एक भाग को प्रस्तुत कर रहे हैं। किसी देश या राज्य के विकास के लिए जनता और सरकार के बीच अच्छा संबंध होना बहुत जरूरी है। संबंध अच्छा तभी बन सकता है जब सरकार जनता के हित में कार्य करे और उसी प्रकार जनता भी सरकार के कार्यों का समर्थन करे। सरकार और जनता के बीच संबंध को व्यवस्थित करने के लिए संविधान का निर्माण किया गया है। दिल्ली के प्रोफेसर बेंजामिन बड़ा आज हमें बतला रहे हैं कि भारत का संविधान आदिवासियों को क्या सुविधाएं प्रदान करता है। साथ में वे यह भी बतला रहे हैं कि गांव में विकास के कौन से अवसर हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है दिल्ली के प्रोफेसर बेंजामिन बड़ा के साथ एक भेंट वार्ता। उनके साथ बात कर रही हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की।
हमारे संविधान में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची दिया है। हमारे भारत के कानून में पेशा कानून दिया हुआ है। हमारे छोटा नागपुर के कानून में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, CNT जिसको हम लोग बोलते हैं, और SPT संथाल परगना टेनेंसी एक्ट दिया है। और उसी प्रकार से हमारे कोल्हान रीजन यानी कि चाईबासा के तरफ अगर हम लोग जाएं तो विल्किंसन रूल दिया हुआ है। मैं कहता हूं बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, संविधान को सपोर्ट करते हैं, नियम कानून को सपोर्ट करते हैं, सरकार को सपोर्ट करते हैं। शर्त यही है कि सरकार कम से कम ये जो संविधान में जो चीज दी हुई है उन चीज का सही से अनुपालन तो करे। संविधान में साफ साफ दिया हुआ है कि 5वीं अनुसूची को अपने तरीके से केवल आदिवासी ही चलाएगा। देखिए, समझने की कोशिश करिए, भारत का जो क्षेत्र है उसमें अलग अलग प्रकार के जमीनें हैं। एक है सामान्य जमीन, एक है जम्मू कश्मीर की जमीन, एक है नॉर्थ ईस्ट की जमीन और एक है छोटा नागपुर यानी अनुसूचित क्षेत्रों की जमीन। अब समझिए, सामान्य जमीन पे जो कानून चलता है वो सामान्यता सामान्य लोगों के लिए होता है। जम्मू कश्मीर में 370 था लेकिन अभी हटा दिया गया। तो पहले जब 370 था तो उसमें जम्मू कश्मीर के उनका जो लॉ था, उनका जो नियम कानून था वो चलता था, तो उसको हटा दिया गया, अब तो सामान्य कानून लागू हो गया। लेकिन आज भी हमारे नॉर्थ ईस्ट में और छोटा नागपुर में जो कानून चलता है वो है 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची और पेशा कानून। उस कानून में साफ तौर से लिखा हुआ है, स्पेशली पेशा कानून में, कि आदिवासी क्षेत्र में तब तक ले कोई काम नहीं कर सकता जब तक ले आदिवासी समुदायों की अनुमति ना मिले। यानी कि काम का मतलब ना वो खनिज माइनिंग कर सकते हैं, ना कोई बिजनेस कर सकते हैं, ना किसी प्रकार का वो वहां पर रह सकते हैं। उनको हर चीजों में अनुमति लेना पड़ेगा उस क्षेत्र के आदिवासी समुदाय से, यानी कि ग्राम सभा से। तो इसीलिए ग्राम सभा की अनुमति के बिना हम उस क्षेत्र में कुछ कर नहीं सकते। तो जब आप बात कर रहे हैं कि हमें सरकार का सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन सरकार को यह समझना है कि जो आज ग्राम सभा के अधिकार हैं उन अधिकारों को ग्राम सभा को दे दिया जाए। आज भी बहुत जगहों पर ग्राम सभाओं को उनके अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं और जो प्रशासन है वो किसी तरीके से थोड़ा ढीला पड़ जा रहा है इन चीजों को देने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ले हम ग्राम सभा को सशक्त नहीं करेंगे जमीनी स्तर पर, हम प्रगति नहीं देख पाएंगे, हम विकास नहीं देख पाएंगे अपने ग्राम सभाओं में। और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज ये है, बहुमूल्य चीज, कि केवल ग्राम सभा का अधिकार देने में नहीं, बल्कि ग्राम सभाओं को जो सरकार का जो बजट है, हर जैसे हर मंत्रालय में एक बजट जाता है विकास करने के लिए, ग्राम सभाओं के लिए भी अलग से एक बजट होकर के उनको देना चाहिए वो बजट, ताकि वो अपने क्षेत्र को उस बजट के सहारे डेवलप कर सके, विकास कर सके। कुआं खुदवाना हो गया, खेती करना हो गया, सोलर प्लांट लगाना हो गया, या अपना सड़क बनाना हो गया, तो एक बजट ग्राम सभा के डायरेक्ट हाथ में और या उनके ग्राम सभा अकाउंट में, बैंक में आना चाहिए, ताकि पूरे लोग जो मिल करके, आदिवासी लोग ग्राम सभा बना करके अपने क्षेत्र को अपने हिसाब से विकसित कर सके। ये बहुत जरूरी है। और जब तक ले, मैं तो फिर आखिरी बार बोलूंगा कि कुछ भी कार्य सरकार करना चाहती है बिना ग्राम सभा की अनुमति से ना करे तो ही अच्छा है, क्योंकि ये कानून में साफ तौर से लिखा गया है।
बिल्कुल। अगला सवाल होगा मेरा कि हम आदिवासी जल जंगल जमीन से जुड़े हुए हैं और हमारा जो जीविकोपार्जन है जल जंगल जमीन से ही मिलती है, लेकिन जब कुछ हमारे भाई बहने पढ़ लिख जाते हैं, थोड़ा पढ़ लिख जाने के बाद में अपने गांव से थोड़ा लगाव कम हो जाता है।
ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा सिस्टर, कि जब भी कोई थोड़ा बहुत पढ़ जाता है वो अपनी प्रगति, अपने विकास के लिए, अच्छी नौकरी पाने के लिए बाहर चला जाता और फिर पीछे पलट करके नहीं देखता। हमारे आज के आदिवासी समुदायों में भी ये देखा जाता है कि कोई थोड़ा सा ऊंचा पद पे चला गया है तो निचले आदिवासियों को, जो लोग आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा विकसित नहीं हुए हैं, उनको थोड़े से दूसरी दृष्टि से देखते हैं। मैं इस चीज को ऐसे देखता हूं कि जो लोग विकसित हो गए हैं, जो आर्थिक रूप से थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं, उनके अंदर एक भय और डर है। वो डर ये है कि कहीं हम फिर से गरीब ना बन जाएं, कहीं हम फिर से पिछड़े ना बन जाएं, इस कारण से हमें आगे ही देखना है। समस्या क्या है कि यहां पर इन्होंने जो विकास की परिभाषा अपने लिए स्थापित करी वो आर्थिक विकास की परिभाषा के रूप में करी है। हालांकि मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी या एक मौके के रूप में देखता हूं कि यदि अगर हम थोड़ा सा विकसित हो गए हैं, आर्थिक रूप से हमारे पास ज्यादा पैसा आ गया है, तो उस पैसे से हम और पैसे कैसे कमाएं, या उस पैसे से हम अपने भाई लोगों का गांव जंगल जमीन का भी विकास करके उनको भी विकसित करें आर्थिक रूप में और अपना भी खुद मुनाफा कमाएं। इस तरीके से लोग सोच नहीं पा रहे। मैं बिजनेस मैनेजमेंट का प्रोफेसर हूं और मैं लोगों को सिखाता हूं कि बिजनेस कैसे किया जाता है, एंटरप्रेन्योर कैसे बना जाता है और किस तरीके से पैसे से पैसा कमाया जाता है। तो मैं आज उन आदिवासियों के बारे में, उन आदिवासियों को बोलना चाहूंगा कि यदि आपके पास बहुत पैसा है और आप लोग थोड़े विकसित हो गए हो और आपको डर है कि नहीं, हम वापस गांव नहीं जाएंगे, पिछड़ा हुआ है, गंदे लोग हैं वहां पर, पढ़े लिखे नहीं है, तो मैं आप लोगों को एक खुशखबरी देता हूं। वो खुशखबरी ये है कि यदि आपके पास अच्छा धन है तो आप एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं अपने गांव में। आप बहुत अच्छे दूसरों को विकास के लिए, उनको नौकरी देने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं अपने खुद के गांव में। देखिए, सबसे बड़ी बात जो आपको समझना ये, जो विकसित है, वो ये है कि हमारी ताकत क्या है। हम आदिवासियों की ताकत है हमारा जमीन, हमारे पास जंगल है, हमारे पास पानी है, ये सब है हमारी ताकत। हमारी कमजोरी क्या है? हमारी कमजोरी यह है कि हम डरते हैं और एक दूसरे से थोड़ा सा जलन भी करते हैं कि वो कोई हमसे आगे ना बढ़ जाए, हम ही अपने में थोड़ा सा बड़े रहना चाहते हैं दूसरों में। ये भावना आदिवासी मूल्य नहीं है। हमारा आदिवासी जीवन शैली समान भावना को लेकर के चलता है। तो यदि किसी के पास पैसा है, जैसे मैं दिल्ली में हूं, बहुत लोग, मैं आपको सच बता रहा हूं, बहुत लोग करोड़पति हैं हमारे आदिवासी लोग दिल्ली में, उनके पास बहुत पैसा है। आज वो लोग मुझसे जब रिटायर हो रहे हैं तो मुझसे पूछते हैं कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं इसको कहां, क्या करना है, क्या नहीं करना, वो मुझसे बिजनेस प्लान पूछते हैं। और मैं उनको यही बोलता हूं, वापिस जाइए गांव में, क्योंकि आज जब तक ले हम गांव में वापिस नहीं जाएंगे तब तक ले शायद हम अपना विकास नहीं कर पाएंगे। कोरोना में देखिए ना, शहर के सारे लोग मर रहे थे लेकिन बहुत कम हमारे आदिवासी समुदायों को कोरोना से पीड़ित हुए, प्रभावित हुए, उनकी खुद की जड़ी बूटी उनको चंगा कर दे रही थी। हमको पैसे से मतलब नहीं था, भले दुनिया वाले लोग पैसे, रुपया, डॉलर्स में कम पड़ रहा था, लेकिन आदिवासियों को ना पैसे की जरूरत थी ना रुपया की जरूरत थी, क्योंकि उनके पास सब कुछ था।
बिल्कुल।
हमको वापिस वही प्रणाली मिल जाना है।
श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली में बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोफेसर बेंजामिन बड़ा के साथ हुई भेंट वार्ता को सुन रहे थे। प्रोफेसर बेंजामिन बड़ा को उनके सुंदर सुझावों के लिए धन्यवाद। भेंट वार्ता के अगले भाग को हम अगले कार्यक्रम में सुनेंगे और अब आए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।
श्रोताओ, आज हम धर्माध्यक्ष धर्म सभा की 16वीं महासभा द्वारा अनुमोदित और प्रकाशित संकलित रिपोर्ट का तीसरा भाग प्रस्तुत कर रहे हैं। धर्माध्यक्ष धर्म सभा की 16वीं महासभा के समापन पर संकलित रिपोर्ट महिलाओं और लोक धर्मियों की भूमिका, धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और उपयाजकों की प्रेरिताई, गरीबों और प्रवासियों के महत्व, डिजिटल मिशन, सार्वभौमवाद और दुर्व्यवहार जैसे विषयों पर विचार और प्रस्ताव प्रस्तुत करती है। इस रिपोर्ट में दुनिया और कलीसिया की मांगों पर नए सिरे से नजर डाली गई है। महासभा की तैयारी में 3 दिवसीय आध्यात्मिक साधना के बाद 4 अक्टूबर को वाटिकन के संत पापा पॉल सिस्टम हॉल में शुरू हुई। महासभा ने 29 अक्टूबर को अपना पहला सत्र समाप्त किया। लगभग 40 पृष्ठों का दस्तावेज उस सभा के कार्य का परिणाम है, जब दुनिया में पुराने और नए दोनों तरह के युद्ध छिड़े हुए हैं, जिनके नाटकीय परिणाम अनगिनत पीड़ितों पर पड़ रहे हैं। रिपोर्ट आगे कहती है, गरीबों की, पलायन को मजबूर लोगों की, हिंसा और जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी परिणामों से पीड़ित लोगों की चीखें हमारे बीच गूंजती रही। हमने न केवल मीडिया के माध्यम से बल्कि उपस्थित लोगों की आवाजों के माध्यम से भी उनका रोना सुना, जो व्यक्तिगत रूप से दुखद घटनाओं में शामिल थे, चाहे उनके परिवारों के माध्यम से या उनके लोगों के माध्यम से। इस चुनौती और अन्य चुनौतियों के लिए विश्वव्यापी कलीसिया ने छोटे सर्किलों और हस्तक्षेपों में प्रतिक्रिया देने की कोशिश की है। संकलित रिपोर्ट एक प्रस्तावना और 3 भागों में विभाजित है, जो 2024 के दूसरे सत्र में किए जाने वाले काम का मार्गदर्शन करता है। श्रोताओ, गत सप्ताह हमने संकलित रिपोर्ट की दूसरे भाग को सुना, जिसके तहत हमने लोक धर्मी और परिवार, कलीसिया के जीवन और मिशन में महिलाएं, याजकवाद, क्या महिलाओं के लिए उपयाजक अभिषेक शुरू की जाए, भेदभाव और दुर्व्यवहार, समर्पित जीवन, उपयाजक और प्रशिक्षण, ब्रह्मचर्य जीवन, धर्माध्यक्षों की भूमिका और दुर्व्यवहार के बारे में चर्चा सुनी। आज हम संकलित रिपोर्ट के तीसरे और अंतिम भाग को सुनेंगे। प्रशिक्षण। रिपोर्ट में धर्म सभा दृष्टिकोण के प्रशिक्षण के लिए अनुरोध किया गया है, जिसमें सिफारिश की गई है कि रिश्ते और यौन शिक्षा पर काम किया जाए, युवा लोगों को उनकी व्यक्तिगत और यौन पहचान में परिपक्व होने के लिए साथ दिया जाए, और ब्रह्मचर्य एवं समर्पित शुद्धता का जीवन जीने के लिए बुलाए गए लोगों की परिपक्वता का समर्थन किया जाए। रिपोर्ट मानव विज्ञान के बीच संवाद को गहरा करने के महत्व पर जोर देती है, ताकि कलीसिया के भीतर विवादास्पद मामलों पर सावधानी पूर्वक विचार किया जा सके, यानी अन्य मुद्दों के बीच जैसे कि पहचान और कामुकता के मामले, जीवन का अंत, जटिल वैवाहिक स्थितियां और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित नैतिक मुद्दे। इस तरह के मुद्दे निश्चित रूप से विवादास्पद हैं, क्योंकि वे समाज और कलीसिया में नए प्रश्न खड़े करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस चिंतन के लिए आवश्यक समय निकालना और इसमें अपनी सर्वोत्तम ऊर्जा का निवेश करना महत्वपूर्ण है। सरल निर्णय दिए बिना, जिससे व्यक्तियों और कलीसिया के लोगों को ठेस पहुंचती है। रिपोर्ट में यह याद करते हुए कहा गया है कि कलीसियाई शिक्षण पहले से ही इनमें से कई मामलों पर दिशा की भावना प्रदान करता है, लेकिन इस शिक्षण को स्पष्ट रूप से अभी भी प्रेरितिक अभ्यास में अनुवाद की आवश्यकता है। सुनना। इसी चिंतन के साथ रिपोर्ट उन लोगों को सुनने और उनका साथ देने के निमंत्रण को नवीनीकृत करती है जो अपनी शादी की स्थिति, पहचान या कामुकता के कारण कलीसिया में हाशिए पर या बहिष्कृत महसूस करते हैं। सभा में उन लोगों के लिए प्यार, दया और करुणा की गहरी भावना महसूस की गई, जो कलीसिया द्वारा आहत और उपेक्षित महसूस करते हैं, जो एक जगह चाहते हैं जहां वे सुरक्षित महसूस कर सकें, न्याय किए जाने के भय के बिना उनकी बातें सुनी जा सके और उनका सम्मान किया जा सके। दस्तावेज में इस बात पर जोर दिया गया है कि ख्रिस्तियों को हमेशा हर व्यक्ति की गरिमा के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। बहुविवाद। अफ्रीका से धर्म सभा के कुछ सदस्यों द्वारा धर्म सभा हॉल में बताए गए अनुभवों के प्रकाश में SECAM अफ्रीका और मदागास्कर के धर्माध्यक्ष सम्मेलनों की संगोष्ठी को बहुविवाह और इसके संगत में रहने वाले लोग जो विश्वास में आ रहे हैं, इन विषयों में से एक ईश शास्त्रीय और प्रेरितिक विवेक को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। डिजिटल संस्कृति। अंत में संकलित रिपोर्ट डिजिटल वातावरण की बात करती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम आज की संस्कृति को उन सभी स्थानों तक पहुंचाएं जहां लोग जीवन में अर्थ और प्रेम चाहते हैं, जिसमें वे स्थान भी शामिल हैं जिनमें वे अपने सेलफोन या टैबलेट के माध्यम से प्रवेश करते हैं। इसे ध्यान में रखना जरूरी है कि इंटरनेट नुकसान और चोट भी पहुंचा सकता है, जैसे डराना, दुष्प्रचार, यौन शोषण और बुरी लत आदि। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बात पर विचार करने की तत्काल आवश्यकता है और क्रिश्चियन समुदाय यह सुनिश्चित करने में परिवारों का समर्थन कैसे कर सकता है कि ऑनलाइन स्थान न केवल सुरक्षित रहे बल्कि आध्यात्मिक रूप से जीवन देने वाला भी बने। श्रोताओ, आप धर्माध्यक्ष धर्म सभा की 16वीं महासभा द्वारा अनुमोदित और प्रकाशित संकलित रिपोर्ट को सुन रहे थे और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।